सदुक्ति कोयम सात्वराजेन्द्र भवान जमन शोचति तम चाश कतम शिष्ट पुरे दानी मत परम यथा प्रयान्ति संयान्ति श्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते विजुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। यथा धानासु वैधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि शोधितानि स मायया वयं च त्वं चेमे तुल्यकालाश्चराचरः जन्म मृत्युर्यथा पश्चात् प्राणैव मधुनापि भो भूतै भूतानि भूतेशः सृजत्वतिहं त्यजः आत्मसृष्टैर स्वतन्त्रै अनपेक्षोऽपि बालवत् देहेन देहिनो राजन् देहात् देहो विजायते बीजादेव यथा बीजम् देह्यर्थ इव शाश्वतम् देह देहि विभागोऽयम् अविवेककृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोऽयम् यथा वस्तूनि कल्पितः। श्री शुक उवाच एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुः द्विजोक्तिभिः प्रमिर्ज्य पाणिना पाणिम् न वक्त्वम् आधीम लानव भाषत शब्दार्थ पढ़िए।
शब्दार्थ कहा कौन अयम वह स्यात है तो तुम्हारे लिए राज इंद्र राजाओं में श्रेष्ठ भवान आप यम जिसको अनुशोचति शोक कर रहे हो त्वम तुम च और अस्य उसका सौ का कतमह कौन सृष्ट जन्म में पूरा गत इदानीम इस समय अतः परम अतः हे राजन जिस शव के लिए तुम शोक कर रहे हो उसका तुमसे और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो और यह पुत्र है किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पहले भी था क्या सचमुच अब भी यह संबंध है क्या यह भविष्य में भी बना रहेगा। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य नारद तथा अंग्या मुनि ने जो उपदेश दिए हैं मोहग्रस्त बद्ध जीव के लिए वास्तविक आध्यात्मिक उपदेश है। यह संसार अस्थाई है किंतु अपने पूर्व कर्मों के कारण हम यहाँ आते हैं और शरीर धारण करते हैं और समाज मैत्री प्रेम राष्ट्रीयता तथा जन समूह के रूप में अस्थाई अस्थाई संबंधों की सृष्टि करते हैं जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये अस्थाई संबंध न तो भूतकाल में थे और न भविष्य में रहेंगे, अतः वर्तमान समय में ये तथाकथित संबंध छलावा है। तीसरा श्लोक का इसका भी
अनुवाद और तत्पर पढ़िए केवल।
हे राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से देहधारी जीवात्माएं काल के वेग से कभी मिलती हैं कभी बिछुड़ जाती हैं। तात्पर्य, बद्ध जीव के अज्ञान का कारण उसकी देहात्म बुद्धि है। यह देह भौतिक है किंतु देह के भीतर आत्मा है, यही आत्मज्ञान है। दुर्भाग्यवश सांसारिक मोहवश जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है वह देह को ही आत्मा मान लेता है। उसे यह ज्ञात नहीं हो पाता कि देह पदार्थ स्वरूप है। ये देह बालू के छोटे छोटे कणों के समान एक दूसरे के निकट आती और पुनः काल वेग से पृथक हो जाती है। लोग झूठे ही संयोग या वियोग के लिए शोक करते हैं। जब तक वे इसे समझ नहीं लेते तब तक सुख का प्रश्न नहीं उठता। अतः भगवद्गीता 2:13 में भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उपदेश यही है, देहिनो स्मिन यथा देहम कौमारम जौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तप्न मोहयति। जिस प्रकार बद्ध जीव को इस देह में क्रम से बालकपन जौवन वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी तरह मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती रहती है। तो स्वरूप सिद्ध धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। हम देह नहीं हैं, वरन हम तो इस देह में बंदी बने आध्यात्मिक जीव हैं। हमारी वास्तविक रुचि इस समान तत्व को जान लेने में है, तभी हम अपने आध्यात्मिक उन्नति का कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम देहात्म बुद्धि में बने रहते हैं तो हमारा दैनीय भौतिक अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। हम शांति तथा सुख के लिए कितना ही राजनैतिक तालमेल, सामाजिक कल्याण कार्य, चिकित्सा सहायता तथा अन्य कार्यक्रम क्यों न बना लें, यह कभी नहीं चल सकता। हमें एक एक करके भौतिक जीवन के सभी कष्ट उठाने ही होंगे। इसलिए भौतिक जीवन को दुखालय शाश्वतम अर्थात दुखों का आगार कहा गया है। यथा धाना सुवै धामा भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतानि भूतेषु चोरितानि स माया। जब जीवों को धरती में बोया जाता है,
जब बीजों को
धरती में बोया जाता है तो वे कभी तो उगते हैं और कभी नहीं उगते। कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती, जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से बाध्य होने पर भावी पिता को कभी संतान की प्राप्ति होती है तो कभी गर्भ में ही नहीं रहता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह माता पिता जैसे बनावटी संबंध के लिए शोक ना करे, क्योंकि अंततः इसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में रहता है। तात्पर्य, वास्तव में महाराज चित्रकेतु को पुत्र प्राप्त ही नहीं होना था, यद्यपि उसने सैकड़ों हजारों स्त्रियों से विवाह किया, किंतु वे कभी बांझ निकली, वो सभी बांझ निकली और उनमें एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सका। जब अंगिरा ऋषि राजा से भेंट करने आए तो राजा ने विनय की कि उसे कम से कम एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से माया ने अनुग्रह करके एक पुत्र प्रदान किया, किंतु इस बालक को अधिक काल तक जीवित नहीं रहना था, इसलिए अंगिरा ऋषि ने प्रारंभ में ही राजा से यह कह दिया था कि उसे पुत्र मिलेगा किंतु वह उसके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। परमात्मा या विधाता की इच्छा नहीं थी कि चित्रकेतु को कोई संतान हो। जिस प्रकार भूने हुए अन्न से अन्न नहीं उत्पन्न होता हो सकता, उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा से नपुंसक पुरुष के कोई संतान नहीं हो सकती। कभी कभी नपुंसक पिता और बांझ माता से भी संतान उत्पन्न हो जाते हैं, तो कभी कभी पुंसत्व को प्राप्त पिता तथा उर्वर माता के भी संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। निसंदेह कभी कभी गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग करने पर भी संतान उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे माता पिता उसे गर्भ में ही मार देते हैं। इस युग में तो भ्रूण हत्या गर्भ में ही संतान का वध सर्वसामान्य बन चुकी है। ऐसा क्यों है? गर्भ निरोधक विधियों से के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है? कभी कभी संतान क्यों उत्पन्न होती है जिससे माता पिता को गर्भ में ही उसका वध करना पड़ता है? इससे निष्कर्ष यहाँ निकलता है कि हमारी तथा कथित वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्था यह निश्चित नहीं कर पाती कि क्या होने वाला है। जो कुछ भी होता है वह तो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर की इच्छा मात्र से हम परिवार, समुदाय तथा व्यक्तित्व जैसी व्यवस्थाओं में स्थित हैं। वे हमारी व्यवस्थाएं माया के अधीन हमारी इच्छाओं के अनुसार ही परमेश्वर द्वारा संपन्न होती है। अतः भक्ति काल में मनुष्य को निष्काम होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में कहा गया है, अन्नाभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मा दिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि सकाम कर्म अथवा मानसिक उहापोह से जनित ज्ञान द्वारा भौतिक लाभ प्राप्ति की इच्छा बिना अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए कर्म करे, अन्य बातों के लिए उसे पूरी पूरी तरह परम पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए। हमें कभी ऐसा योजना नहीं बनाना चाहिए जिससे हमें अंततः उद्विग्न होना पड़े। वयम च तुम चे चे मे तुल्य बालो कुचरा जन्म मृत्यु यथा पाचक्रंग वयधुना पिभो। हे राजन, तुम तथा हम अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता, पत्नियां एवं मंत्री और समस्त संपूर्ण जगत में इस समय जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी क्षण भंगुर हैं। यह स्थिति न तो हमारे जन्म के पूर्व थी और न हमारी मृत्यु के पश्चात रहेगी। अतः इस समय हमारी स्थिति क्षणिक अस्थायी है। यद्यपि यह मिथ्या नहीं है, तात्पर्य मायावादी दार्शनिकों का कहना है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म अर्थात जीव तो सत्य है किंतु उसकी वर्तमान दैहिक स्थिति मिथ्या है। वैष्णव दर्शन के अनुसार वर्तमान स्थिति क्षणिक है, मिथ्या नहीं है, यह स्वप्न तुल्य है। सचमुच मनुष्य के सो जाने से पूर्व स्वप्न का अस्तित्व नहीं होता, न ही उसके जग जाने के पश्चात रहता है। स्वप्न का अस्तित्व तो इन दोनों स्थितियों के मध्य में रहता है, अतः यह अस्थायी होने के कारण मिथ्या है। इसी प्रकार यह समस्त भौतिक सृष्टि जिसमें हमारी अपनी सृष्टि तथा दूसरे की सृष्टियां सम्मिलित हैं, अस्थायी हैं। स्वप्न की स्थिति के लिए न तो सोने के पूर्व और न जागने के पश्चात ही हम शोक व्यक्त करते हैं। स्वप्न की स्थिति की अथवा स्वप्न जैसी स्थिति को हमें वास्तविक नहीं मान लेना चाहिए, न ही उसके लिए शोक करना चाहिए, यही वास्तविक ज्ञान है। भूतर भूतानि भूतेषु सृजत्यवतिहन्ति च आत्मसृष्टे स्वतंत्रेण प्रेक्षोपि बालवत्। सबों के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो भी जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ बालक अनचाही किसी न किसी वस्तु घरौंधा को बनाता है, उसी प्रकार से भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सृजन पालन तथा संहार का कार्य करते रहते हैं। वे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राज्य नियुक्त करके पालन करते हैं तथा सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। सृजन पालन तथा संहार करता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, किंतु माया के सम्मोहन से वे अपने को कर्ता पालक तथा संहारक मान बैठते हैं। तात्पर्य, किसी में असामर्थ नहीं कि वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से सृजन पालन तथा संहार कर सके। अतः भगवद गीता 2:27 का कथन है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारं विमुद्धात्मा कर्ता हमेति मन्यते। प्रकृति के तीन गुणों से भ्रमित होकर मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को ही कर्ता मान बैठता है, जबकि समस्त कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपादित होते हैं। श्री भगवान के निर्देश से प्रकृति गुणों के अनुसार जीवात्मा को सृजन पालन तथा संहार के लिए प्रेरित करती है, किंतु परमात्मा तथा उसकी प्रतिनिधि प्रकृति से अनजान रहकर जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। वास्तव में वह कर्ता है ही नहीं, मनुष्य को परम कर्ता परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस समय संसार में जो असंतोष छाया हुआ है उसका कारण नेताओं की अविद्या है। जो यह भूल जाते हैं कि श्री भगवान ने उन्हें कार्य करने के लिए भेजा है, क्योंकि उन्हें ईश्वर से नियुक्त किया है, इसलिए उन्हें चाहिए कि उसमें परामर्श लेकर तदनुसार कार्य करे। परामर्श के लिए भगवद्गीता नामक ग्रंथ है, जिसमें परमेश्वर के सारे निर्देश दे रखे हैं। अतः जिन्हें ईश्वर ने सृजन पालन तथा संहार कार्यों के लिए नियुक्त कर रखा है, उन्हें चाहिए कि ईश्वर से परामर्श लेकर उसी के अनुसार कार्य करे। तब प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। देहिनो
ठीक है,
श्रील प्रभुपाद की।
चित्रकेतु को श्री अंगिरा और नारद मुनि का उपदेश इस अध्याय में है। श्री शुक उवाच उचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तः सदुक्तिभिः। राजा चित्रकेतु अपने मरे हुए पुत्र के पास उपान्ते पतितं गिरे थे, स्वयं मृतकोपमं मरे जैसे पड़ गए थे, शोक में उनको होश नहीं था। शोकाभिभूतम, शोक से वे अभिभूत थे, शोक के बस में थे। ऐसे राजा से दोनों ऋषि अंगिरा और नारद जी उच्चतु बोले, सदुक्ति भी बहुत श्रेष्ठ उक्ति, ज्ञान प्रद उक्ति बोले। क्या बोले, यही दूसरे श्लोक से है। हे राजेंद्र, अयम तव कह स्यात्, यह जो मरा हुआ है पड़ा है सौ, ये तुम्हारा क्या लगता है, क्या संबंध है? तो राजा ने कहा, मैं इसका पिता हूं, ये मेरा पुत्र है। तो प्रश्न कर रहे हैं, पूरा इसके पहले इदानिम इस समय वर्तमान समय में और अतः परम इसके बाद, पहले इसके जन्म के पहले तुम्हारा क्या संबंध था और इस समय क्या है जब मर गया है, और मर करके जब ये अदृश्य हो जाएगा उस समय क्या संबंध रहेगा? कहने का आशय यह है कि कोई संबंध नहीं है, सब झूठा संबंध है। जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, केवल बीच में दिखाई पड़ता है, वो संबंध है नहीं, झूठा दृश्य। भगवान ने गीता में कहा है, अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव का तत्र का परिदेवना। अव्यक्ता दीनि भूतानि, सभी जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, अव्यक्त में रहते हैं, पता नहीं रहता है कि किस देश का जीव, मनुष्य या पशु या पक्षी, कीट पतंग हमारा पुत्र बनेगा, किसी को पता रहता है? कोई व्यक्ति मनस करता है हमको बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, लेकिन कौन व्यक्ति बेटा होगा, किस देश का, वो कौन ब्लेच होगा या हिंदू होगा, कहाँ का व्यक्ति हमारा पुत्र बनेगा, कुछ पता नहीं रहता है। पहले अव्यक्त आदिनी, प्रारंभ में सभी अव्यक्त में रहते हैं, केवल बीच में व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में व्यक्त होते हैं, और अव्यक्त निधनान्यव, और अव्यक्त में चले जाएंगे, निधन भी अव्यक्त में हो जाएगा। तो इस विषय में क्यों शोक कर रहे हो, तत्र का परिदेवना, इसीलिए अंगिरा जी पूछ रहे हैं, पूरे दानी मतः परम, तुम्हारा इस शव के साथ क्या संबंध था पहले और इस समय क्या है और बाद में क्या होगा? यही है ज्ञान। वास्तव में किसी भी व्यक्ति का किसी से कोई संबंध नहीं है। अरे व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, अपने देह से भी कोई संबंध नहीं है। ये देह पहले नहीं रहता है, बीच में प्रकट होता है और अंत में भी नहीं रहेगा। ये वास्तव में देह का जो संबंध है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो राजा ने कहा पहले मुझे पुत्र प्राप्त नहीं था, फिर पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ ही दिन के बाद ये मर गया, इसलिए शोक हो रहा है। तो दृष्टांत देते हैं, जथा प्रयांति संयंति स्रोतो वेगेन बालू का, जैसे बालू के कण नदी की धारा में कभी कभी बहते हुए एक संग हो जाते हैं, थोक बन जाता है, कभी धारा में बहते हुए एक संग हो जाते हैं और कभी धारा से अलग अलग हो जाते हैं। धारा में ऐसा प्रवेग है कि उसके कारण अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे नदी की धारा में पड़ करके बालू के कण, बालू समझते हैं ना, बालू रेता कहते हैं, बहते रहते हैं, कभी कभी एक साथ हो जाते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं, नदी की धारा में पड़े हुए हैं। इसी तरह से तथा कालेन देहिना, समस्त देही, देही का अर्थ देह वाले प्राणी काल के वेग में है, काल की धारा में है, यही काल कभी मिला देता है, कभी अलग कर देता है। तो पहले आपको पुत्र नहीं था, फिर काल पुत्र मिला दिया और वही काल फिर बिछड़ा दिया, तो इसमें शोक क्या करना है। यथा प्रयांति संयांति स्रोतो वेगेन बालुका, संजुज जनते विजुज जनते तथा कालेन देहिन, जैसे स्रोतो वेगेन नदी की धारा के वेग से बालू के कण आपस में मिलते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही काल वेग से कभी कभी प्राणी मिलते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। ये जो परिवार बना है लोगों का अलग अलग, तो कौन परिवार में ला दिया, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में किसी को लाए, काल ही लाया, काल जन्म दिया है, काल पालता है और काल ही अलग अलग कर देते हैं। तो इसको बार बार कह रहे थे पहले हमको पुत्र नहीं था, अब हुआ है और हो करके फिर मर गया। तब अंगिरा जी कहते हैं जथा धाना स्वय धाना भवंती न भवंती च, जैसे किसी बीज से, बीज को बोया जाता है तो उस बीज से और फसल होती है या नहीं होती, और बीज उत्पन्न होते हैं। एक गेहूं बोया जाता है तो उससे कई गेहूं पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उर्वर भूमि नहीं है, आद्र नहीं है, तो बीज नहीं उगते हैं, या बीज भून दिया गया, भूज दिया गया है, वो नहीं उगता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी नहीं होते हैं, भवंती, कभी होते हैं कभी न भवंती, कभी किसी को पुत्र प्राप्त होता है कभी नहीं होता है। और बहुत योग्यता होती है, जैसे तुम, बहुत पत्नियां थी और पत्नियों में कोई मेडिकल गलती नहीं थी, चेकअप कराता ही होगा, सब ठीक था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। और इस संसार में देखा जाता है कितना उपाय लोग करते हैं, अनेक प्रकार की गोली खाते हैं, क्या क्या कि अब अगला बच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो ही जाता है। नहीं चाहते हुए भी चाहने वाले को बच्चा नहीं हुआ है और नहीं चाहने वाले को हो जाता है, तो व्यक्ति आर्टिफिशियल फिर गर्भ हत्या करना चाहता है, गर्भ के बच्चे को मार देता है राक्षस जैसे। ये सब क्यों होता है? किसी को कोई पुत्र हुआ, किसी को नहीं हुआ, ये सब चोदितानी इस माया, इस माया भगवान की माया शक्ति से ये सब होता है। किसी को कहीं जन्म मिलता है पुत्र के रूप में या पिता के रूप में, कहीं भी कोई जन्म लिया है तो भगवान की शक्ति से ये सब जन्म हुआ है, हमारा इसमें कोई बल नहीं है। इतना बड़ा शक्तिशाली राजा, उसने विवाह किया था 1 करोड़। कभी कभी विश्वास नहीं होगा ये सुन करके, लेकिन ये तो कथा श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा है और वे स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस कथा को वेदव्यास देव से, नारद मुनि से और देवल ऋषि से सुना हूं। ये सच्ची बात है। 1 करोड़ विवाह किए थे, फिर भी 1 बच्चा नहीं हुआ। 1 करोड़ स्त्री से 1 बच्चा नहीं हुआ। भगवान की इच्छा होती है तो 1 स्त्री 2-4 बच्चे पैदा कर देती है। ये सब भगवान की इच्छा से होता है, अपने प्रयास से, अपनी इच्छा से, अपनी योजना से कुछ नहीं होता। तो इतना बड़ा शक्तिशाली राजा था, बताए कितने डॉक्टर उसके पास होंगे, 1st क्लास के डॉक्टर, सब पहले बता देते होंगे कि क्या होगा, पर सबने यही देखा कि बच्चा नहीं हो रहा है, नहीं होगा। बच्चा जो उनको हुआ वो तो अंगिरा जी के प्रभाव से हुआ, मंत्र पढ़ करके चरु बनाए, खीर बनाए और उसे 1 स्त्री को खिला दिया गया तो गर्भवती हो गई। वास्तव में चित्रकेतु को पुत्र नहीं होना था, अंगिरा जी ने बता दिया था कि पुत्र 1 होगा लेकिन आपके हर्ष का और शोक का कारण होगा। जो भाई शोक हो गया है तो फिर ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देने के लिए 2 मुनि आए हैं, 1 अंगिरा और नारद जी। कभी कभी बहुत जरूरत पड़ती है, इसीलिए भक्तों को चाहिए कि संघ बना करके उनके पास पहुंचे और उनको ज्ञान दें। कितने चित्रकेतु भरे पड़े हैं, अज्ञान में हैं। तो 1 ऋषि से काम नहीं हो पाएगा, 1 भक्त से वो नहीं सुन पाएगा। 2 रहेंगे तो कोई बात वो कहेगा, कोई बात वो कहेगा, करते करते गेर पकड़ लेगा। कोई कहेगा जप करना चाहिए, कोई कहेगा भगवान के बारे में गीता पढ़ो, भगवान का उपदेश बहुत सुंदर है, कोई कोई सिखाएगा। इस तरह से जब एक ही बात को 2 व्यक्ति कहते हैं तो उसका प्रभाव होता है। एक बार की सत्य घटना लोग बताते हैं कि दशहरा का समय था, काली पूजा होने वाली थी, तो एक पंडित जी गए, बहुत शुद्ध पंडित थे। एक व्यक्ति के यहां बकरा खरीद लाए बकरे की बलि देने के लिए, तो 3 ठग तीन जगह पर खड़े हो गए एक एक किलोमीटर की दूरी पर, और ये लोग एक ही बात बोलते थे। पंडित जी आ रहे थे बकरा को लेकर के, तो उनको देख करके पहला ठग हंसने लगा। एक किलोमीटर दूर था वो, तो पंडित जी ने पूछा, क्यों बेटा हंस क्यों रहे हो? हंसी इसीलिए आ रही है कि आज आपको क्या हो गया, ये कुत्ता क्यों टांग कर जा रहा है? तो पंडित जी को थोड़ा सा शौक हुआ, हुए कुत्ते को उतार करके देखे, पूंछ पैर सब कुछ बकरा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये बकरा है। तो ठग कह दिया कि हमें ऐसा लग रहा है कि तो कुत्ता है, आप जैसा समझे। तो दूसरे ठग के पास पहुंचा बीच वाले को, वो भी उसी तरह से कहा, ठहाका मार के हंसने लगा। इतने पवित्र ब्राह्मण, नहा धोआ करके रहने वाले शुद्ध ब्राह्मण, आज आपको क्या हो गया, ये कुत्ता क्यों टांग कर जा रहे हैं? अब पंडित जी को ज्यादा शक हो गया है, क्योंकि एक ही बात दूसरा व्यक्ति भी कह रहा था, तो वे जानते थे कि ये बकरा है, देखे थे, पैसा दिए थे बकरे वाले को, खरीद करके ला रहे थे। लेकिन दो व्यक्ति के कहने से दुगना असर हो गया, उनको शंका भर गई, बहुत ध्यान से देखने लगे। बकरे का कान, बकरे का टांग, बकरे की टांग हिला करके बोलते थे कि कैसे बोलता है, तो बोली भी बकरे की थी, सब कुछ बकरे का, बकरा था ही। तीसरे ठग के पास पहुंचे, वो भी हंसने लगा ऐसे। तब पंडित जी ने विचार किया कि लगता है कि जरूर गड़बड़ है। तो पंडित जी ने पूछा तीसरे ठग से, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? जाइए जाइए, हमको हंसी इस पर आई कि इतने पवित्र ब्राह्मण और आप ये कुत्ता लेकर क्यों जा रहे हैं? तब उन्होंने देखा भी नहीं, बकरे को फेंक करके गए नदी में स्नान किए, स्नान तिलक करके तब आए, वो बकरा को ठग ले गया खाने के लिए। तो इस तरह से तीन ठगों की बात से असर हो गया। तो ऐसे ही मैं उदाहरण दे रहा था कि कहीं कहीं किसी व्यक्ति को समझाने के लिए तीन तीन चार चार वैष्णव जाना चाहिए। यदि दृष्टांत विपरीत दृष्टांत है ठग का दृष्टांत, लेकिन वास्तव में वैष्णव को भी ऐसे ही जाना चाहिए। यदि आप किसी को समझाना है, यदि आप चाहते हैं भवसागर को पार करना है, यदि आप चाहते हैं सारे दुखों से मुक्त होना है, तो बस एक काम कीजिए, बहुत आसान काम है, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। यही बात यदि सब लोग कहेंगे तो असर हो ही जाएगा। जब बकरे को कुत्ता बनाया जा सकता है, तो ये सच्चा मंत्र है, महामंत्र है, इसको क्यों नहीं लोग स्वीकार करेंगे? ठग की तरह पढ़ जाना चाहिए, हरे नाम हरे नाम कलो नास्ते 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 गति। और कोई उपाय नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ दान, ये सब व्यर्थ है। केवल कलयुग में हरे नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, सभी यही बता रहे, क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ जाएगा। इसीलिए चित्रकेतु महाराज को ज्ञान देने के लिए दो मुनि आए तो कहते हैं कि जथा भानासु, जैसे धान, धान का अर्थ होता है अनाज, अनाज बोया जाता है जमीन में तो कभी उससे और अनाज होते हैं, उत्पन्न होते हैं, कभी नहीं होते हैं। भवंती न भवंती च, उत्पन्न होते हैं नहीं भी उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से इस संसार में किसी को कोई पुत्र प्राप्त हो जाता है, नहीं प्राप्त होता। तो आपको पुत्र प्राप्त हुआ, ये केवल ईश्वर की माया है, शक्ति है। वयम च त्वम च ये चे में, हम आप और भी आपके साथी जो हैं सरकारी लोग, आपकी स्त्रियां, जितने भी जीव हैं, तुल्य काल है, इस समय वर्तमान है, ये जन्म के पहले और मृत्यु के बाद सब नहीं रहेंगे। मैं वयम, हम लोग भी नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, और आपके राज्य में जनता नहीं रहेगी, सारे कर्मचारी सरकारी नहीं रहेंगे। ये तो ध्रुव सत्य है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सपने का, जैसे सपना देखते हैं, सपना आने के पहले कुछ पता नहीं रहता है, किसको पता रहता है कि आज मैं क्या सपना देखूंगा, और जग जाने के बाद भी सपना नहीं रहता है, तो बीच में सपना दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं है। इसी पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जीव सत्य है, ये सब वस्तुएं देह हैं, आदि सत्य नहीं है, झूठा है। पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि झूठा नहीं है, ये अनित्य है, ये क्षणभंगुर है, लेकिन बिल्कुल झूठा नहीं है। झूठा इस माने में है कि उसका हम उपयोग नहीं कर पाते, कर नहीं पाएंगे। सपने में मान लीजिए आपको बहुत सुंदर घर मिल गया, बहुत सुंदर कार मिल गई, और घर भी मिल गया, कार भी मिल गई, और आपने यह भी देखा कि मेरा विवाह बहुत श्रेष्ठ कन्या के साथ हो गया, लेकिन जगने के बाद न तो कार है, न घर है, न कन्या, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो सपना यदि टूट गया, बीत गया, तो उसके लिए आप रोएंगे नहीं। समझा रहे हैं चित्रकेतु को, ये पुत्र प्राप्त हुआ ये सपना जैसा ही था, वास्तव में सत्य नहीं है, कोई किसी का पुत्र है नहीं। अगर दिखाई पड़ रहा है कि वर्तमान काल में, तो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। सभी लोगों को इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, केवल चित्रकेतु के लिए उपदेश नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये जीवन क्षणिक है, इसके बाद संबंध नहीं रहेगा, और पहले भी नहीं था, केवल बीच में ऐसा लग रहा है कि ये बेटा है, ये मैं बाप हूं। यह असत्य है, तो क्यों असत्य है फिर भी दिख रहा है, राजा ने पूछा। तब नारद जी कहते हैं, चोदितानी इस माया, ये केवल ईश्वर की माया है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है, ऐसा लग रहा है सब। सत्य नहीं है फिर भी सत्य लग रहा है। सपना को तो समझ जाते हैं कि ये सपना है, लेकिन ये भी सपना जैसा है इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिन जप करेंगे, बहुत दिन भागवत सुनेंगे तब ज्ञान होगा। ऐसे सुनते हैं कि ये जगत स्वप्नवत है, लेकिन हमारा मन मानता नहीं है कि सपना है, लेकिन ये सपना है ही। कब जगेंगे? जगने का अर्थ है जब सब विषय विलास विरागा जानिए तब ही जीव जग जागा, तब जानिए कि जीव जग गया जब विषयों से वैराग हो जाए। जब ज्ञान होता है तब समझ में आता है कि ये विषय भोग ये सब व्यर्थ है। भूतः भूतानि भूतेशः, भूतेशः का अर्थ है समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान भूतेशः। भूतानि भूतों को जीवों को भूतेषु, या भूत का अर्थ, भूतानि का अर्थ है पुत्र आदि, और भूतेषु का अर्थ है माता पिता आदि। किसी जीव का भगवान जीव में जन्म देते हैं। भूतेश ही भूतों में भूतों को जन्म देते हैं। किसी को मां बना करके, पिता बना करके किसी जीव को पुत्र के रूप में जन्म दे देते हैं। ये सब भूतेश की ही माया है, जीवों के ईश्वर। किसी किसी जीव में किसी भूत को, भूतानी जीव को दे देते हैं पुत्र के रूप में। तो भगवान किसी को माता पिता बना देते हैं, पुत्र दे देते हैं। भूतर भूतानि भूतेषु सृजति अवतिहन्ति, भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि करते हैं और पालन भी करते हैं। सरकार बना करके भगवान पालन कर रहे हैं, और हंति और सांप के रूप में, बाघ के रूप में हो करके जीवों के द्वारा, जीवों को ही बना देते हैं सांप या बाघ, और हंति हनन कर देते हैं। जन्म भी वही देते हैं, पालन भी वही करते हैं, और नाश भी वही कर देते हैं। भूतैर भूतानि, भूतों द्वारा जीवों द्वारा भूतानि जीवों का सृजति जन्म देते हैं, सृष्टि करते हैं, और अवति पालन करते हैं। हंति जीवों के द्वारा ही जीवों का नाश कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। ये सब करते हैं भगवान, लेकिन नाम होता है कि वो कर रहा है, वो कर रहा है। सबको जन्म देते हैं केवल भगवान, वही पालन कर रहे हैं, सबका वही पालन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपनी बुद्धि से, मेहनत से इतने लोगों का पालन कर रहा हूं, इसी बात में ही भगवान सब व्यवस्था किए, वही पालन करने की शक्ति देते हैं, वस्तु देते हैं। विश्व में जहां भी जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं, इन अनंत कोटि जीवों को भोजन देना, पानी देना, हवा देना, ये सब कुछ व्यवस्था कौन करता है? भूतेश श्री भगवान कर रहे हैं। सृष्टि करने से पहले भगवान पूरा विचार कर लेते हैं कि इतने जीव बना रहा हूं, इनके लिए रहने का आवास चाहिए, इनके भोजन का प्रबंध चाहिए। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता भगवान को जाकर के सावधान करके, सरकार इतना सृष्टि मत कीजिए कि आपका दिमाग काम न करे, आपको बड़ी परेशानी होगी, इतने मनुष्यों को आप जन्म दे रहे हैं, इतने पशुओं को। लेकिन ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं, भगवान के पास पर्याप्त शक्ति है इस सृष्टि को बनाए हैं, उनका संसार उनका जगत परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है, हवा की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, रहने की जगह है। केवल मनुष्य की एक कमजोरी है कि वो दूसरे का हक मारने लगता है। भगवान कम नहीं बनाया है, बहुत बनाए हैं, बहुत भूमि, बहुत जल, अग्नि, हवा, आकाश पर्याप्त बनाए हैं। ये उनकी सृष्टि है, किसी मनुष्य की सृष्टि नहीं है। वही जन्म दिए, वही पालते हैं और वही प्रलय कर देते हैं। हंती सृजति अवति हंती, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और नष्ट कर देते हैं। आत्मसृष्ट स्वतंत्र, अपने द्वारा सृष्ट, अपने द्वारा रची हुई वस्तुओं के द्वारा, अपने द्वारा अपने से रचे हुए जीवों के द्वारा जीवों को जन्म दे देते हैं, जीवों से जीवों का पालन कराते हैं और जीवों से जीव का वध भी करा देते हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, उनको कोई जरूरत है या उनकी शक्ति नहीं है? इसी से ना जीवों से सहायता लेते हैं, जीवों से जीव को उत्पन्न करते हैं। जैसे माता पिता मिल करके बच्चे को जन्म देते हैं, तो भगवान में शक्ति कम हुई ना, वो इतना समर्थ है, ईश्वर है, तो दूसरे जीवों से क्यों सहायता लेते हैं? कि वे जीव दूसरे के द्वारा उत्पन्न किए हुए नहीं है, आत्मसृष्ट है, स्वयं भगवान ने ही उत्पन्न किया। कोई संसार से जरूरत नहीं है भगवान को, ऐसा नहीं है कि बैकुंठ में अब यहां से जाएगा राशन तब खर्चा चलेगा, या लक्ष्मी जी चिंतित होंगी, यहां से कुछ भी जरूरत नहीं है। भगवान अनपेक्ष इस जगत के किसी भी भोग से, वस्तु से, प्राणी से भगवान को कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे बैकुंठ में यहां से पढ़े लिखे इंजीनियर ले जाएंगे, काम करेंगे, नहीं नहीं, अनपेक्ष की किसी की कोई जरूरत नहीं, फिर भी क्यों करते हैं? सृष्टि करने में जीवों की सहायता लेते हैं, पालन में सरकार की सहायता लेते हैं। यदि भगवान हैं तो क्यों नहीं आकर के पालन करते हैं सबका? वहीं बैकुंठ से आकर के सबको खिलाते पिलाते, कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है, लेकिन सभी जीवों को वही बनाए हैं, उनमें शक्ति दिए हैं, पालन करते हैं अनेक वस्तुओं द्वारा, अनेक विधि द्वारा पालन करते हैं। और वही मार भी देते हैं। मारने में, पालन करने में भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है। जो उदाहरण देते हैं ऐसे बालवत, बालक की तरह बच्चा यदि खेलता है, खेलते खेलते कभी कभी घरौंदा बनाता है, घर बनाता है, और उसको तोड़ भी देता है, ढह देता है लाता लुटी करके। देखा है ना अपने बच्चों का खेल, खेलते हैं, घर बनाते हैं, यहां तक कि गुड़िया का विवाह भी कराते हैं, बारात ले जाते हैं, ले आते हैं, और फिर बरातियों को और घर को सबको लता लुती करके नष्ट कर देते। इसमें कोई प्रयोजन नहीं होता है, बच्चों का स्वभाव है। वैसे ही भगवान बच्चा है, वास्तव में बच्चा तो है ही, यशोदा मैया के बच्चा है। मैं विश्व की सृष्टि करने में, पालन करने में उनको कोई परिश्रम नहीं है। करा लेते हैं, परंतु सब उनकी शक्ति है। जितना भी पालन के लिए समान है संसार में चाहिए, सब भगवान देते हैं। दूध, दही, घी सब कुछ वही दिए हैं। यहां तक कि जो मांसाहारी हैं उनके लिए मांस भी वही दिए हैं, जो शराबी हैं उनके लिए शराब भी वही दिए हैं, घास खाने वाले के लिए घास दिए हैं, और तंबाकू वाले के लिए तंबाकू दिए हैं, सब कुछ वही बनाए। तो इस तरह से विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा मरण सब कुछ कृष्ण के अधीन है, भगवान के अधीन है। वही बाल कृष्ण गोपाल जी जगत के परम ईश्वर हैं। हमारा एक ही काम है कि भगवान के चरणों में भक्ति करना, अपना जो प्रेम है भगवान के प्रति स्वाभाविक, उसको विकसित कर लेना। इस चिंता में नहीं रहना चाहिए कैसे संसार चलेगा, कैसे संसार में खल मरेंगे, दुष्ट मरेंगे, भगवान ही मारने वाले हैं, भगवान पालने वाले हैं। चिंता होनी चाहिए एक ही बात की कि हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी। इसके लिए प्रभुपाद जी ने उपाय बताया है, सर्वदा श्री भगवान का नाम जपना चाहिए और भगवान के अर्चा विग्रह को अपने मंदिर में या घर में स्थापित करके उसे पूजना चाहिए। भगवान से ऐसे संबंध बढ़ेगा, पूजा करेंगे, प्रणाम करेंगे, श्रृंगार करेंगे, एक जीवन में आदत बन जाएगी भगवान को सजाने की, खिलाने की, गीत सुनाने की। तो ऐसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। यहां चित्रकेतु महाराज का प्रसंग कहा जा रहा है इसलिए कि इन्होंने भक्ति किया। भक्ति किस अवस्था में किए, बहुत बड़ा संकट आ गया, पुत्र मर गया, तब भक्ति किए। अंगिरा जी कहते हैं कि तदैव ते परम ज्ञानम ददाम गृहमागत ज्ञात्वा अन्याभिनिवेशम ते पुत्र में ददौ हम। मैं आया था पहले आपके घर तो सोचा था आपको परम ज्ञान दूं, लेकिन आप ज्ञान लेने के मूड में थे नहीं, आपका तो पुत्र में आवेश था, आप पुत्र के लिए मर रहे थे, तो इसीलिए मैंने पुत्र आपको दिया। अब तो आपको ज्ञान हो गया ना कि पुत्र वालों को कितना दुख होता है। यह अंगिरा जी जैसे ऋषि पुत्र दे करके और पुत्र को फिर मार करके ज्ञान देते हैं। अब तो आपको ज्ञान हो गया ना कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है, पुत्री पुत्र हो चाहे पुत्री हो या कोई परिवार का संबंध है, कोई भी, सब दुखद है, दुख देने वाले हैं जीव आत्मा को। ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन पता चल जाता है उस समय जब विश्रोह होता है। सब केवल दुख देने वाले हैं, अपना खास भाई, मामा, चाचा, ये सभी दुख देने वाले हैं। ऐसे थोड़े काल के लगता है कि ये हमारे सुख के साधन है, हमारा बेटा, हमारी पत्नी, लेकिन केवल दुख देने के लिए है। यहां तक कि हमारा देह केवल दुख देने के लिए मिला है। आत्मा ऐसे बिना देह के रहे तो पूर्ण सुखी रहेगा, लेकिन देह को मैं मान करके दुख में पड़ा हुआ है। देह को सजाना है, देह को खिलाना है, देह में दर्द हो गया तो कुछ दवा देना है। जितना दुख है सब देह में है, देह के कारण दुखी हो रहा है जीवात्मा। तो जब देह दुखद है तो देह के संबंधियों के विषय में कहना ही क्या है, सभी दुखद हैं। अतः महाराज आप इस मोह को छोड़िए, आप स्वस्थ हो जाइए, अपने से विचार कीजिए अपनी आत्मा के विषय में कि आप आत्मा हैं, देह नहीं हैं। अपने को देह मानने के कारण आप बच्चे के प्रति शोक कर रहे हैं। यह बच्चा देह से जन्म लिया है ना, और देह आपका नहीं है, ये भगवान की शक्ति से बना है। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति से जीव बना है, चेतना, और अपराशक्ति से ये देह बना है। तो भगवान की दोनों शक्तियां, जीव या देह। जीव का कुछ है नहीं, देह ईश्वर का, ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर से मिला है, उसी देह से ये बच्चा जन्म लिया। तो बीच में आपका कैसे हो गया, तो भगवान का है। कोई भी बच्चा, कोई भी संबंधी किसी का नहीं है, सब भगवान के हैं। इसीलिए सबको भगवान से जोड़ना चाहिए, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भगवान कृष्ण से जोड़ना चाहिए। यही ज्ञान है। इस तरह से ज्ञान दिया अंगिरा जी ने। ये कथा तो बड़ी विस्तार से है, ये फिलोसफिकल टॉपिक है, इसलिए हमें कठिन पड़ रहा है। पहले इसको समझना पड़ता है, समझ करके तब समझाया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी से समझने की चेष्टा करता हूं, तो आज यहीं पर समाप्त करता हूं कथा। 16वें अध्याय की प्रारंभ दूसरे सीटिंग में करूंगा, 16वें अध्याय की, जिसमें चित्रकेतु महाराज को भगवान का दर्शन हुआ है। जय श्री प्रभुपाद। इतनी बड़ा देखिए, साधु संघ की महिमा यहां दिखाई गई। इतना आसक्त राजा स्त्रियों में, राज्य में, पुत्र में, इतना नीच गिरा हुआ चेतना जिनकी गिरी थी, वो एक दिन साधु की कृपा से, नारद जी की कृपा से भगवान का दर्शन किए। 16वें अध्याय में यह वर्णन है। जय श्री प्रभुपाद।